मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज 11 अप्रैल 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही स्वागत करता हूं अपने उस एक नौजवान साथी का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन दोस्त का नाम है विपिन कुमार, जो बेगूसराय बिहार से हैं। तो विपिन, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। स्वागत के बाद मित्रों, अब मैं बधाई देना चाहूंगा आप सभी की ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से भी हमारे सिक्स्थ बैच के स्टूडेंट रामेश्वर प्रताप सिंह को, जिन्होंने मध्य प्रदेश के पीएससी एग्जामिनेशन का प्री क्वालिफाई किया है। तो रामेश्वर, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां। साथ ही हम सब की तरफ से आगे के स्टेजेस की सफलताओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी और ईश्वर से प्रार्थना भी। मित्रों, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूंगा, या आप अनुरोध भी से आप कह सकते हैं। आप लोगों को मालूम है कि सिविल सर्विस के इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं, फाइनल रिजल्ट के बाद इंटरव्यूज चल रहे हैं शाहजहां रोड पर लोक सेवा आयोग के भवन में। और मैंने बहुत पहले भी आप लोगों से, जब इंटरव्यू शुरू होने ही वाले थे, तो कहा था कि आप सब, जिनके लिए भी संभव हो सके, वो लोक सेवा आयोग के दफ्तर में जाएं, जिसे धौलपुर हाउस कहा जाता है, वहां जाएं। और जो स्टूडेंट इंटरव्यू देकर बाहर आ रहे हैं, उनसे मिलें, उनसे न केवल इंटरव्यू के बारे में ही बातचीत करें कि क्या क्या पूछा गया है, बल्कि उनके तैयारी के अनुभवों के बारे में भी पूछें और यह भी जानें कि मेंस की तैयारी उन्होंने कैसे कैसे की थी। दोस्तों, लेकिन मुझे हो सकता है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट गए भी हों, लेकिन आप लोगों के ईमेल के जरिए मुझे पता नहीं लग पा रहा है कि आप में से कोई गया था। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि खासकर जो दिल्ली में रह रहे हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में, तो बहुत से स्टूडेंट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। फिर पूरा नेशनल कैपिटल रीजन है, पूरा मेरठ, गाजियाबाद और इधर गुड़गांव का बहुत बड़ा एरिया इससे सटा हुआ है। बहुत से स्टूडेंट यहां सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। मैं आप लोगों को फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि प्लीज आप सब वक्त निकालें, कम से कम 2 दिन तो आपको वहां जाना ही चाहिए। मुझे मालूम है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि हम ये 2 दिन अपने क्यों खराब करें, हम अभी प्री की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों, आप इस धारणा से अपने को मुक्त कराइए, इस कैद से बाहर निकलिए। वहां आप 2 दिनों में अगर 2 स्टूडेंट से भी मिल लिए, तो आपको जितनी ज्यादा जानकारियां मिलेंगी, वो आप 20 दिन तक अपने कमरे में बंद रहकर हासिल नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों, आप जाइए वहां, बहुत ही पूरी तरह से धौलपुर हाउस बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ है, चाहे धूप कितनी भी हो, आपको धूप नहीं लगेगी। वहां आपके खाने पीने के भी इंतजाम रहते हैं, ठेले वेले लगे रहते हैं, बकायदे पक्की सड़क बनी हुई है, जिसमें आप चहल कदमी कर सकते हैं। और वैसे भी अभी तो दिल्ली का मौसम बहुत ही खुशनुमा हो गया है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, और अगर लू भी चलती तो क्या बात थी। इस उम्र में तो आपके शरीर से, आपसे लू को डरना चाहिए, लू से आप क्यों डरें। तो मैं चाहूंगा फ्रेंड्स कि आप सब जाएं, और जाने के बाद प्लीज मुझे लिखें भी कि क्या प्रश्न पूछा गया, क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपका क्या अनुभव रहा, ताकि मैं आपके अपने इन अनुभवों को अपने दूसरे प्रिय श्रोताओं तक भी पहुंचा सकूं, तो उनको भी इससे फायदा मिलेगा। बट नेचुरली कि देखिए, ये काम दिल्ली और उसके आसपास के रहने वाले ही स्टूडेंट कर सकते हैं, बाहर के स्टूडेंट नहीं। तो आपको अपने लिए भी और जो दूसरे स्टूडेंट हैं जो पूरे देश में फैल कर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मुझे लगता है कि यह काम करना चाहिए। मुझे आप लोगों की ऐसे ईमेल की प्रतीक्षा रहेगी। दोस्तों, अब मैं आता हूं न्यूज एनालिसिस पर। देखिए, तीन महत्वपूर्ण खबरें हैं, उनकी मैं केवल चर्चा करके छोड़ना चाहूंगा, और जो चौथी खबर होगी उस पर मैं आज थोड़ी सी विस्तार से बातें करूंगा। ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंधों को लेकर के न्यूज में खबर थी, आज अखबारों में भी है, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। कोई बहुत महत्व परीक्षा की दृष्टि से कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि हिंद महासागर में आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर प्रशांत महासागर के एरिया में स्थित है, तो हमारे सामरिक दृष्टि से उसका अपना महत्व है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा कंटेंट के रूप में आपके लिए यह उपयोगी हो सकता है, जहां तक मैं समझता हूं। इसके बाद एक खबर थी फ्रेंड्स की, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, देख रहे हैं कि अभी यूपी के चुनाव के मतगणना के दौरान ही जो बहुजन समाज पार्टी ने जो एक मुद्दा उठाया था कि ईवीएम मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी की गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इतनी अच्छी सफलता मिल रही है और बहुजन समाज पार्टी को हार मिली है, वो फिर मामला बढ़ता चला गया और आपने न्यूज में सुना कि 16 पार्टियां देश की जिसमें कांग्रेस जैसी पुरानी और बड़ी पार्टी भी है चुनाव आयोग से मिली है और उसको अपना विरोध दर्ज कराया। सबने ये मांग की है कि वो जो बंद व्यवस्था जो है पहले जैसी उसे फिर से शुरू किया जाए। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इतनी पार्टियां अगर मिलकर मांग कर रही हैं तो आप आउटराइट तो रिजेक्ट नहीं कर सकते। आपने देखा कि चुनाव आयोग ने भी कहा है कि ठीक है हम सभी पार्टियों की बैठक बुलाएंगे और फिर जो राय बनेगी उसके हिसाब से देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो एक नई शुरुआत हुई है विवाद की, खासकर जो चुनाव सुधार से ही जुड़ा हुआ है, तो आपको थोड़ा सा इस टॉपिक को ट्रैक करते रहना है। इसके बाद फ्रेंड्स एक खबर चंपारण सत्याग्रह को लेकर था, चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे हुए हैं। टॉपिक ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 100 साल हुए हैं, लेकिन मैंने कभी देखा है कि जो टॉपिक इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं सिविल सर्विस में उस पर फिर सवाल भी ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं। वैसे भी चंपारण सत्याग्रह पर सीधे सीधे तो सवाल पूछे नहीं जाएंगे, आपके फ्रीडम मूवमेंट का हिस्सा है तो क्या पूछा जा सकता है। इस तरीके से कुछ हम फ्रेम कर सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा भी न्यूज में भी वो था कि चंपारण सत्याग्रह ने महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया, इसको प्रूफ करने के लिए पूछा जा सकता है या इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने को कहा जा सकता है। फिर आपने एक और भी प्रश्न मुझे लगता है कि इस पर शायद बन सकता है और वो ये कि जो चंपारण्य जो सत्याग्रह था गांधी जी का भारत में आने के बाद वो पहला मूवमेंट किया था उन्होंने, और सच पूछे तो उस मूवमेंट में जो चंपारण सत्याग्रह का पूरा फैब्रिकेशन आप देखेंगे जो बनावट देखेंगे तो उसमें वो सारे तत्व मिल जाते हैं जिनका उपयोग गांधी जी ने बाद के अपने मूवमेंट में किया, बाद में जो उन्होंने आंदोलन छेड़े उन सबका थोड़ा 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 नमूना चंपारण सत्याग्रह में मिल जाता है। तो ये भी प्रश्न बनता है, तो आपको चंपारण्य सत्याग्रह की तैयारी ऐसे करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको एक उपाय सुझा सकता हूं कि चंपारण्य सत्याग्रह के बारे में गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में काफी लिखा है, तो अच्छा होगा कि आप उस चैप्टर को जो उनके ऑटोबायोग्राफी में है वहां से पढ़े, क्योंकि गांधी जी ने खुद ही लिखा है तो वहां आपको वो छोटी छोटी चीजें समझ में आएंगी, पकड़ में आएंगी, हिस्ट्री की किताब में शायद वो पकड़ में न आए। तो मित्रों अब इन तीन न्यूज के बाद अब मैं चौथी सबसे महत्वपूर्ण आज की न्यूज पर आता हूं, वो भारत बांग्लादेश के संबंधों को लेकर के, खासकर तीस्ता जल समझौते को लेकर के। आपने अभी तक देखा है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भारत आई थी और कल वो लौट गई। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि बहुत से समझौते हुए, 35-36 समझौते हुए, अलग अलग क्षेत्रों में हुए, लेकिन तीस्ता जल समझौता नहीं हो सका जो सबसे इम्पोर्टेंट समझौता था। मतलब उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि वो यहां आई हैं तो तीस्ता जल पर तीस्ता नदी पर जो समझौता होना था उसके पानी के बारे में वो करके जाती, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वहां चुनाव होना है और अगर शेख हसीना जी को इसमें सफलता मिल गई होती तो डेफिनेटली चुनाव में उनकी सफलता की बहुत अधिक संभावना बढ़ जाती और भारत के लिए भी वो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि शेख हसीना जो मुजीबुर रहमान है उनकी बेटी है और 1971 में जो बांग्लादेश बना, इसको उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर के, तो वहां जो मूवमेंट चल रहा था भारत ने उनको सहयोग दिया था और उससे बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था। तो वो उस समय मुजीबुर रहमान उसके लीडर थे, उस समय जो आंदोलन हुआ था पाकिस्तान के विरुद्ध जो चला था, और चूंकि उनकी बेटी है तो स्वाभाविक है कि भारत के प्रति उनका एक अलग अतिरिक्त लगाव है, और ऐसी स्थिति में भारत के लिए भी उनका चुनाव में फिर से जीत कर आना एक अच्छा मामला हो सकता है, होगा ही, क्योंकि आपने 2-3 दिन पहले के मेरे डेली ऑडियो में सुना होगा कि अब चीन भी धीरे धीरे बांग्लादेश में अपनी घुसपैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इस बीच में बांग्लादेश ने उससे कुछ इस तरह के हथियार और युद्ध सामग्री ली भी है, तो हमारे लिए कोई चिंता का विषय है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि तिस्ता जल पर कोई समझौता नहीं हो पाया और उसका मूल कारण बांग्लादेश की जो चीफ मिनिस्टर रही हैं ममता बनर्जी जो हैं वो समझौता नहीं हो पा करने दिया उन्होंने, क्योंकि जो नदी का जो विवाद है सच पूछे तो वेस्ट बंगाल से ही जुड़ा हुआ और इसमें राज्य का भी उतना ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उनको बिना आप कॉन्फिडेंस में लिए उनकी बिना स्वीकृति के भारत सरकार समझौता नहीं कर सकती। ये घटना इससे पहले भी थी 2011 के आसपास जब हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे तब भी ममता बनर्जी जी ने उनके साथ अचानक जाने से मना कर दिया था क्योंकि लग रहा था कि तिस्ता नदी समझौते पर हो सकता है कि उन पर दबाव पड़े। तो मित्रों कुल मिलाकर यह कि जो बांग्लादेश और भारत का जो रिलेशन है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है और तिस्ता नदी जल विवाद के मामले के कारण तो वह और भी इम्पॉर्टेंट हो गया है। मैं यहां आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप 2013 का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखें जो सबसे पहला ही क्वेश्चन पेपर था 2013 का तो उसमें आपको बहुत ही साफ तौर पर बांग्लादेश से पूछा गया बांग्लादेश के लिए पूछा गया प्रश्न साफ साफ तौर पर दिखाई देगा। सीधे सीधे उसमें एक प्रश्न पूछा गया था। अब आप देखिए इसका मैं थोड़ा सा आपको फैब्रिकेशन बता रहा हूं ताकि आपको पता लग सके कि ऐसे इश्यूज पर कैसे तैयारी की जानी है। प्रश्न पढ़ रहा हूं मैं 2013 के जनरल स्टडीज सेकेंड पेपर मेंस का है। बांग्लादेश के ढाका में शाहबाग स्क्वायर में हुए विरोध प्रदर्शनों ने समाज में राष्ट्रवादी व इस्लामी शक्तियों के बीच मौलिक मतभेद उजागर किया है, भारत के लिए इसका क्या महत्व है? आप देख रहे हैं आखिरी में क्या जोड़ दिया, भारत के लिए इसका क्या महत्व है? यानी कि अब तिस्ता नदी पर अगर कुछ बात पूछी जाएगी तो याद रखिए कि जो कॉन्टेक्स्ट होगा, जो संदर्भ होगा, जो मूल्यांकन होगा वो भारत के संदर्भ में ही होगा। ज्यादातर इंटरनेशनल इश्यूज पर जो क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों वो इसी तरीके से बनते हैं। लेकिन एक और भी दूसरा संदर्भ है। 2013 में ही देखिए एक और प्रश्न पूछा गया था, वो था भारत श्रीलंका संबंधों के संदर्भ में विवेचना कीजिए कि किस प्रकार आंतरिक ब्रैकेट में दिया हुआ देशीय कारक विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। भारत श्रीलंका संबंध उस समय कांग्रेस की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, तमिलनाडु में जो एआईडीएमके की पार्टी है जयललिता जी उसकी गठबंधन की एक पार्टी थी, सहयोगी थी और वो लगातार तमिल मामलों को लेकर के भारत सरकार पर दबाव डालती थी और यही कारण रहा कि भारत सरकार और श्रीलंका के संबंध बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हो सके थे। अब आप इस सिचुएशन को, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बांग्लादेश पर अप्लाई करके देख सकते हैं क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो तिस्ता नदी जल का समझौता तो हो गया है, जो भी विवाद है और जो होना चाहिए वो जो मामला नहीं हो पा रहा है उसका कारण अब हम कह सकते हैं कि चाहे वो जायज और नाजायज की बात नहीं है, है ना, सबके अपने अपने व्यूज हैं, हमारी चीफ मिनिस्टर के अपने व्यूज हैं, शेख हसीना जी के अपने व्यूज हैं, भारत सरकार के अपने व्यूज हैं, भारत सरकार उसको लार्जर स्केल पर देखेगी, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर देखेगी, बट नेचुरल की सीएमओ अपने स्टेट पर देखेंगी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री अपने राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगी, तो हर का अपना अपना व्यू प्वाइंट है और यही चुनौती होती है कि सबके व्यू प्वाइंट को लेकर के आप कैसे एक अच्छा सा व्यू प्वाइंट अपना तैयार कर सकते हैं। तो मित्रों ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया है केवल इस संदर्भ में कि जो तिस्ता जल का जो मामला है उसे आप किस तरीके से सिविल सर्विस परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको तैयारी के बारे में बताता हूं। मैंने तो अभी एंगल बताया है कि क्या एंगल होगा क्योंकि सीधे सीधे नहीं पूछा जाएगा कि क्या समस्याएं हैं और क्या 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 पॉइंट्स हैं। इसी तरह से कुछ न कुछ मूल्यांकन करने को आपसे कहा जाएगा तो मूल्यांकन का जो एंगल है वो मैंने आपको बता दिया। देखिए फ्रेंड्स अब आप कैपेसिटी कैसे बिल्डिंग करेंगे, स्ट्रेट तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो शायद अब सिविल सर्विस के प्रश्नों को हल करना संभव नहीं होगा, जो मैं कई कई बार आप लोगों को बता देता हूं और इसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा कि आप सब नाराज ना हो कि सर बार बार ये बात क्यों कहते हैं। दोस्तों अब आपको चाहिए कि थोड़ा सा आप बांग्लादेश के बारे में जान लें, थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में जान लें, थोड़ा सा भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप के भी क्या बैकग्राउंड है उसके बारे में जान लें और थोड़ा सा तिस्ता नदी के बारे में जान लें, यानी जल के शेयरिंग जो जिस तरीके से हो रही, बस आप इतना जान लें, अखबारों से आप पढ़ते रहेंगे, अभी एडिटोरियल कमेंट भी, एडिटोरियल आर्टिकल्स भी आपको पढ़ने को मिलेंगे, मैं आज भी आपको कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं, इसके बाद आपका काम बन जाएगा। उस पर थोड़ा सा सोच विचार कर लेंगे, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स नोट कर लें, वो आपके कंटेंट का काम करेगा, वो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देगा और बस एक टॉपिक तैयार हो गया। और बहुत ज्यादा आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। जैसे मित्र मान लीजिए कि बांग्लादेश पर आप थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं, तो आप देख लें कि भारत में कहां है, नक्शा उठाएं और देखें कि ये भारत के ईस्ट में है, भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। एशिया महाद्वीप में देखेंगे तो एशिया महाद्वीप के साउथ में है, बे ऑफ बंगाल में है, आप देखेंगे बिल्कुल बंगाल की खाड़ी के नीचे बांग्लादेशी नाम है, वेस्ट बंगाल है, तो बटने चले कि ये भी बांग्लादेश वहीं आसपास ही होगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स ये है कि बांग्लादेश में हमारी गंगा नदी बह के जाती है, आप जब गंगा नदी का पूरा वो देखेंगे तो बांग्लादेश में भी जाती है। बांग्लादेश में इसको गंगा नदी नहीं कहते, बांग्लादेश में इसको पद्मा नदी कहते हैं। तो बांग्लादेश में तीन बड़ी नदियां हैं, जिसमें एक है गंगा, दूसरी है मेघना और तीसरी है जमुना, और चौथी जो नदी है ये है आपकी तिस्ता, ये वहां की बड़ी नदियां हैं। दोस्तों अब हम थोड़े से उसके डेमोग्राफी पर आ जाते हैं। पॉपुलेशन वहां की थोड़ी कम नहीं है, मतलब 17 करोड़ की आबादी बांग्लादेश की है, 17 करोड़। अगर पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो आठवां सबसे बड़ा देश हो जाता है, वो आठवां सबसे बड़ा देश। हाँ, ये बात अलग है कि वहां हालांकि हम कहते बांग्लादेश उसको कहते हैं, बांग्ला तो लगता है कि बंगाली स्पीकिंग पीपल लोग होंगे तो वो हिंदू होंगे, नहीं, वो बांग्ला बोलते जरूर हैं, लेकिन वहां के 87% पॉपुलेशन जो है ना इस्लाम धर्म को मानती है, इस्लामिक उस तरह से राष्ट्र नहीं, इस्लाम को मानने वाले लोग, और उस हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र भी है। तो आप देखेंगे कि उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। फिर भारत के सिचुएशन में उसको थोड़ा सा देख लीजिए, प्री में आपके काम आ जाएगा कि बांग्लादेश को जब आप नक्शे में देखेंगे तो देखेंगे बांग्लादेश के नॉर्थ में भूटान है, इसके बिल्कुल साउथ में जो बे ऑफ बंगाल पड़ जाता है, साउथ में बिल्कुल टच करता है, वहां पर सुंदरवन जिसको मैनग्रोव कहते हैं वो पाए जाते हैं, सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है, आप जानते हैं मैनग्रोव का सबसे बड़ा यही है। इसके बाद जब आप उसके ईस्ट में जाएंगे तो आपको म्यांमार दिखाई देगा बांग्लादेश के ईस्ट में, और उसके जब आप वेस्ट में जाएंगे तो आपको इंडिया दिखाई देगा, और ये इंडिया के ईस्ट में है, बांग्लादेश का वेस्ट, इंडिया का ईस्ट, ये उसकी सिचुएशन हो जाती है। अब ये आपने बांग्लादेश के बारे में जान लिया, और भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस को आप थोड़ा सा जान लीजिए कि क्या किस तरह से भारत बांग्लादेश के निर्माण में भारत का योगदान रहा है। दोनों सार्क देशों के सार्क संगठन के सदस्य हैं, बिम्सटेक के भी सदस्य हैं, कॉमनवेल्थ के भी सदस्य हैं। चूंकि इसकी सीमा वेस्ट बंगाल और जो त्रिपुरा से मिलती है, त्रिपुरा वाले अगर उसी त्रिपुरा में भी बंगाली भाषा बोलने वाले हैं, वेस्ट बंगाल में भी बोलने वाले हैं, तो भाषा के स्तर पर भी कहीं न कहीं दोनों देशों का आपसी लगाव है। और सबसे बड़ी बात है कि 2015 में, दो साल पहले ही, जून 2015 में दोनों देशों के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, जो एक बहुत बड़ी बात थी, और उस समय काफी इसकी चर्चा भी हुई थी और उम्मीद भी की जा रही थी कि 2015 में शायद लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को आधार बनाकर के कोई क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए, लेकिन पूछा नहीं गया, खैर कोई बात नहीं। इसके बाद मित्रों अब आप तिस्ता नदी पर आ जाइए। कहां से निकलती है? पहली बात तो यह सिक्किम के एक चामरू नामक झील से निकलती है, बांग्लादेश में जाकर के वो ब्रह्मपुत्र से मिलकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, राइट। अब आप देखेंगे कि सीधे सीधे मैं तिस्ता नदी के ऊपर आ रहा हूं, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कि 1983 में एक एडहॉक एग्रीमेंट हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में 1983 में, उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि इंडिया इसके 39% पानी का उपयोग करेगा, बांग्लादेश इसके 36% पानी का उपयोग करेगा, जो रिमेनिंग जो 25% है वो किसी को एलोकेट नहीं किया गया था, वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता था। ये है, बांग्लादेश इस बात की मांग कर रहा है कि उसको इक्वल शेयरिंग चाहिए, पानी का बराबर बंटवारा किया जाए। उसके ऊपर एक कमीशन भी बना, एक आयोग भी बना, और उस आयोग ने दोस्तों ये सजेस्ट किया था कि दोनों को बराबर ही पानी दिया जाए, क्योंकि जो डैम बना है बांग्लादेश ने इस पर, इस नदी पर डैम बनाना शुरू किया था, उस समय बांग्लादेश ने उसका विरोध भी किया था। उस समय ये जो डैम बना है ये बांग्लादेश से केवल 90 किलोमीटर दूर है, मतलब बांग्लादेश के बहुत करीब ही है 90 किलोमीटर, तो कमीशन ने यह भी कहा कि जो पानी का रिसाव होता है तो उससे सिंचाई की जरूरत कम पड़ जाएगी, दोनों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उससे बात बनी नहीं। अब ये जो तिस्ता नदी जहां से बह करके जाती है उस वहां पर धान का कटोरा कहा जाने वाला बांग्लादेश का एरिया है, उनका यह कहना है कि इससे हमारे किसानों की फसल बहुत प्रभावित होगी, तो वो उनके लिए किसानों का मामला बना हुआ है। और भारत के लिए भी यही है, हमारे चीफ मिनिस्टर का भी यही कहना है कि अगर हम अपने पानी की शेयरिंग उनको ज्यादा दे दी तो हमारे किसानों का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। बल्कि उनका तो यह भी कहना है कि उनको बिना पानी मिले ही बांग्लादेश के जो किसान है वहां तीन तीन फसल ले रहे हैं। तो अब भारत क्या कहता है, भारत ने अब जो नया सजेशन दिया है, जो न्यू फार्मूला जिस पर भारत काम कर रहा है, वो है दोस्तों कि इंडिया 42.5% लेगा, जो बांग्लादेश है वो 37.5% लेगा, और जो रिमेनिंग होगा वो 20% एलोकेटेड हो जाएगा, ये कहना। लेकिन यहां भी बराबर की बात नहीं है और बांग्लादेश बराबर की मांग कर रहा है। तो मित्रों, ये मैंने आपको केवल बैकग्राउंड बताई है दोनों देशों के रिलेशन को लेकर के, खासकर तिस्ता जल समझौते के मामले को लेकर के। अगर आप इतना ही जान गए ना तो सफिशियंट होगा। अब आपको अखबारों की क्लिपिंग्स मिलेंगे, एडिटोरियल कमेंट्स, एडिटोरियल आर्टिकल्स मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको समझने में ज्यादा आसानी हो सकेगी। तो दोस्तों, अब काफी वक्त हो चुका है, अब मैं आता हूं ईमेल पर। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा उत्कर्ष राज को, जो रांची बिहार से हैं। उन्होंने लिखा है कि वहां उनके कॉलेज में एक पैनल डिस्कशन हुआ था, उसमें उनको बेस्ट स्पीकर का अवार्ड मिला। इसके लिए उन्होंने एकेडमी को थोड़ी सी भूमिका को स्वीकार किया है, तो उत्कर्ष इसके लिए बहुत बहुत बधाई। एक मेल मित्रों मुझे मिला है विशाल केसरी का पुणे से, वो सिविल सर्विस की तैयारी भी कर रहे हैं और 11वीं 12वीं के स्टूडेंट को कोचिंग भी पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा है, लिखा है कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में बताया है। विशाल, आपकी इस कोशिश की मैं सराहना करता हूं और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं एकेडमी की पूरी टीम की ओर से। तो सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, उनके प्रति बहुत बहुत आभार। और इन्हीं में से कुछ मित्रों के मैं नाम ले रहा हूं, वो हैं योगेश पुरबिया जवाहर असम से, धर्मराज मिश्रा इलाहाबाद से, कविता पांडे, आकाश कुमार, मनीषा पाल भोपाल से, देवनाथ पटेल परसाडी छत्तीसगढ़ से, धर्मपाल चौधरी हिमाचल प्रदेश से, अभिषेक सोनी गोंडा उत्तर प्रदेश से, महेंद्र मिश्रा, हनी सिंह मुंबई से, ईसु शर्मा दिल्ली से, इरफान सैफी सुल्तानपुर दोस्त मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, अक्षय पवार बैतूल मध्य प्रदेश से, अभिषेक कुमार तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब से, शालिनी पांडे लखनऊ से, नवीन रोहिल्ला हिसार हरियाणा से, धीरज सिंह दिल्ली से, मन्यू राय न्यू दिल्ली से और संकरी पटेल कटक उड़ीसा से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।